آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں۔
سامعین، جب بھی آموں کی بات کی جائے تو پاکستانی آم سب پر سبقت لیتا نظر آتا ہے، اور اس موسم آسٹریلیا میں بھی پاکستانی آموں کے کافی چرچے رہے ہیں۔ لیکن یہ آم کتنا کامیاب رہا اس مارکیٹ میں، اور یہ آم اتنا مہنگا کیوں تھا، اس بارے میں ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ۔ آموں کے سلسلے میں جب ہم نے بات کی کونسل جنرل آف پاکستان محمد اشرف سے، تو سب سے پہلا سوال جو ہم نے ان سے کیا وہ یہ تھا کہ اس موسم میں وبا کے باوجود آموں کی برآمدات کیسی رہیں۔ تو ان کا کہنا تھا،
اس دفعہ پینڈیمک کی وجہ سے پاکستانی مینگو کو تین طرح کے چیلنجز کا سامنا رہا۔ پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ پینڈیمک کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹ ریسٹرکشنز بہت ہائی رہیں، آسٹریلیا نے بھی اپنی فضائی حدود کو بہت محدود رکھا، جو کمرشل فلائٹس تھیں وہ تقریباً بند ہو گئیں، ریپیٹریشن فلائٹ اکا دکا آ رہی تھیں، سو کوئی جہاز اویلیبل نہیں تھے جو پاکستانی مینگو کو آسٹریلیا میں لا سکیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستانی مینگو بائی سی نہیں ٹرانسپورٹ ہو سکتا، وہ صرف بائی ایئر آ سکتا ہے، سو اس وجہ سے جب فلائٹ اویلیبل نہیں تھیں تو ایک ڈفرینٹ قسم کی سچویشن تھی کہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں تھا کہ ہم پاکستانی مینگو کو یہاں پہ لا سکیں۔ دوسرا چیلنج ہمیں یہ رہا کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو سپلائی سائڈ تھی وہ تقریباً چوک ہو گئی۔ پاکستان سے صرف دو ایسی پروسیسنگ فیسلٹیز ہیں جن کو یہ الاؤڈ ہے کہ وہ پروسیس کریں اور ان کا مینگو آسٹریلیا میں ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ دونوں جو ہماری پروسیسنگ فیسلٹیز تھیں وہ بھی بند ہو گئیں۔ تیسرا چیلنج ہمیں یہ رہا کہ چونکہ یہ انپرڈکٹیبل قسم کا سیزن تھا، جو ریگولر امپورٹر تھا جو امپورٹ کرتا تھا اور یہاں پہ سٹوروں کو سپلائی کرتا تھا، وہ اس مارکیٹ میں سے پول آؤٹ کر گیا، چونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ فلائٹ آپریشنز انپرڈکٹیبل ہونے کی وجہ سے ان کو نقصانات کا خدشہ تھا، سو اس وجہ سے وہ پول آؤٹ ہو گئے۔ ان تینوں مسائل کی وجہ سے ہمارا کوئی جون کا مہینہ تقریباً ضائع ہو گیا، لیکن ہم نے اس میں ہمت نہیں ہاری، ہم نے ان تینوں پہ کام کیا۔ پہلا ہم نے یہ کیا کہ جو فلائٹ آپریشنز تھے ان پہ ہم نے کام جاری رکھا، کہ جو ریپیٹریشن فلائٹس آ رہی تھیں ہم نے ان پہ کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ کارگو ہمارا بک ہو جائے، ہم نے اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ آغاز کر دیا اپنی ایکسپورٹس کا یہاں لانے میں۔ دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ جو دو مینگو فیسلٹیز پاکستان میں آسٹریلیا کے لیے الاؤڈ ہیں پروسیس کرنا، ان میں سے ایک میں گورنمنٹ کے شیئرز ہیں، ہم نے ان میں سے اسی ایک فیسلٹی کو یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو نہ صرف اوپن کریں بلکہ آسٹریلیا کے لیے مینگو کو پرائیورٹی دیں۔ ہماری یہ درخواست قبول ہوئی تو اس وجہ سے وہ فیسلٹی اوپن ہو گئی اور ہمیں مینگو پروسیس ہونا شروع ہو گیا۔ تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ریگولر امپورٹر چونکہ مارکیٹ میں موجود نہیں تھا، تو ایک مارکیٹ انسروڈ موجود تھی، تو ہمارے پاس جو ایم ایچ اورز تھے ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا کہ یہ آپ کے لیے آئیڈیل موقع ہے اس مارکیٹ کو اس دفعہ پینیٹریٹ کرنے کا۔ کچھ پھر وہ جو ایم ایچ اورز تھے وہ اس پہ راضی ہو گئے، انہوں نے مینگو منگوایا، ہم نے ان کو پروموٹ کرنے میں ہیلپ کی، سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے لانچ کیا، اکا دکا کچھ جو باکسز تھے وہ انہوں نے جو ریگولر مارکیٹ جو ہمارے اسٹورز ہیں ریٹیل ان پہ بھی کیا۔ تو اس طریقے سے نامساعد حالات کے باوجود ہم نے جولائی کے مہینے میں اپنی جو ایکسپورٹس تھیں مینگو کی ان کو ریزیوم کر لیا آسٹریلیا کے لیے۔
ان تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستانی آموں کی آسٹریلین مارکیٹ میں کارکردگی کیا رہی، اس پر کونسل جنرل کا کہنا تھا،
کہا جاتا ہے جی جہاں چیلنجز ہوتے ہیں وہاں اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں، یہ سیزن اپنے تمام تر چیلنجز کے باوجود اپنی اپرچونیٹیز بھی لے کے آیا۔ اپرچونیٹیز یہ تھیں کہ ہم نے کچھ نئے لوگوں کو اس میں متعارف کروایا اور ہم اپنی بیس کو انکریز کرنے میں کامیاب ہوئے، دونوں سائڈ پہ، سپلائر بیس بھی اور اپنی جو امپورٹر بیس ہے وہ بھی۔ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ کوشش یہ کی کہ نئے امپورٹرز اس مارکیٹ میں آئیں، ان کی وجہ سے جو ایکسپورٹس تھیں وہ ہماری پک اپ ہونا شروع ہو گئیں۔ دوسری سائڈ سے ہم نے نئے امپورٹرز کو بھی متعارف کروایا کہ وہ جو ٹریڈیشنل ہمارے ایکسپورٹرز تھے جن کو آسٹریلیا کی مارکیٹ اس دفعہ چیلنجنگ لگ رہی تھی اور وہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہے تھے، ہم نے کچھ نئے لوگوں کو متعارف کروایا کہ آپ آسٹریلیا کی مارکیٹ میں آئیں۔ اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جہاں جون میں ہماری ایکسپورٹس بہت بری طرح متاثر ہوئیں، جولائی میں ہم نے اس کو کافی حد تک کور کیا۔ ان تمام فلائٹ آپریشنس کی محدود ہونے کے باوجود، تمام مسائل کے باوجود، मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जुलाई 2020 में पिछले साल के जुलाई के मुकाबले में 19% ज़्यादा हुई हैं। मैं सारे का क्रेडिट हमारे इम्पोर्टर्स को देता हूँ, स्पेशली वो यंग मैन जिन्होंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया इम्पोर्ट का, उसको सोशल मीडिया के ज़रिए मार्केट किया, बड़ी अग्रेसिव मार्केटिंग की और उन्होंने अपनी आउटरीच को उन कंज्यूमर तक भी पहुंचाया जिन तक पाकिस्तानी मैंगो पहले नहीं पहुंचता होता था। दूसरी साइड पे मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को दूंगा जिन्होंने इन तमाम चैलेंजेस में, जबकि मैंगो डिफरेंट साइडों से होते हुए इसके ट्रांजिट टाइम बढ़ रहे थे, उसमें पेरिशेबल होने की वजह से नुकसान बड़े हो रहे थे, लेकिन वो उस पर स्टेडफास्ट रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हम 19% जुलाई में एक्सपोर्ट्स में इजाफे के साथ हमने जुलाई को क्लोज़ किया है। जो अगस्त में हम इस स्ट्रीक को कंटिन्यू किए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि अगस्त में हमारी एक्सपोर्ट्स भी पिछले साल के अगस्त के मुकाबले में बढ़ेंगी, इसके बावजूद कि पेंडेमिक की वजह से हमें बड़े एक्सट्रीम शॉक्स का सामना रहा है।
पाकिस्तानी आमों की इतनी बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद आमों की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, इस पर काउंसिल जनरल का कहना था।
पाकिस्तानी मैंगो की प्राइस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जो मैंगो यहाँ पर पहुँचता है उसके कॉस्ट कॉम्पोनेंट क्या हैं। कॉस्ट कंपोनेंट ये हैं जी कि जो मैंगो यहाँ पे पहुँचता है उसकी 70-80% ऑफ द फाइनल कॉस्ट जो यहाँ पे पहुँचाने की है उसमें फ्रेट और लॉजिस्टिक्स हैं। जो मैंगो की अपनी प्राइस है वो तो 15-20% है टोटल जो है, बाकी सारे लॉजिस्टिकल कॉस्ट हैं। इस साल चूँकि फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर थे, जिस तरह एयर टिकट्स के रेट्स 2-3 गुना थे पिछले साल के मुकाबले में, इसी तरह जो कार्गो के की प्राइसेस थी पार्के जी वो भी 2-3 गुना थी। वो मैंगो जो पिछले साल हमें $2-3 पर के जी में पड़ता होता था ऑस्ट्रेलिया के लिए, इस साल हमें उसके $6-8 पे करना पड़े। दूसरा ये इशू हुआ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चूँकि गर्मी का मौसम है और फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने की वजह से कोई रेगुलर सप्लाई चेन नहीं है स्मूथ, तो ट्रांज़िट टाइम ज़्यादा लग रहे थे। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी की वजह से ट्रांज़िट टाइम गर्मी के मौसम में ज़्यादा लगता है तो पाकिस्तानी मैंगो डेलिकेट होने की वजह से रास्ते में ख़राब हो जाता है। वो मैंगो जो रास्ते में ख़राब होता है उसकी प्राइस भी फाइनल शिपमेंट के ऊपर डिवाइड होना होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी बिजनेसमैन ने नुकसान में तो काम नहीं करना होता। जो रास्ते में ख़राब हो गया मैंगो उसकी प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट होनी है जो फाइनल प्रोडक्ट बिक रही है उसके ऊपर। इस वजह से जो फाइनल प्राइस हमें मिली हमारे कंज्यूमर को वो पहले की निस्बत ज़्यादा थी। लेकिन आपने ये ट्रेंड ये देखा होगा कि जैसे जैसे हमारे जो ऑपरेशंस थे फ़्लाइट के वो स्मूथ होते गए, उसी तरह हमारी प्राइस भी नीचे आना शुरू हो गई और जुलाई के मुकाबले में जो अगस्त में हमारे मैंगो की प्राइस है वो 20-30% कम हो गई है कंज्यूमर के लिए ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में भी। एक बात और समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी मैंगो बड़ी एग्जॉटिक वैरायटी है, ये बड़ी डेलिकेट वैरायटी है और इसका टेस्ट जिसके मुंह को लग जाए वो उसकी प्राइस की परवाह किए बगैर भी ख़रीदने के लिए तैयार है। अगरचे हमें इस बात का एहसास है कि हमारे कंज्यूमर चूँकि हमारी कम्युनिटी के अपने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से हमारी ये ख्वाहिश होती है कि उनको किसी सूरत में भी पाकिस्तानी मैंगो महंगा ना मिले, लेकिन हमारे पास अगर चॉइस ये था कि हम महंगा होने की वजह से इसके ऑपरेशन को बंद कर दें तो ये चॉइस हमने एक्सरसाइज नहीं किया। हमने कहा कि वो जिस प्राइस में भी पहुंचता है अगर हमारा कंज्यूमर लेने के लिए तैयार है तो उसको इससे महरूम ना किया जाए कि उसका पूरा सीज़न उसने पाकिस्तानी मैंगो वो टेस्ट करने में भी नहीं के काबिल नहीं हो सका। सो इस वजह से हमारे ऑपरेशन अभी तक चल रहे हैं और माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स पिकअप हो रही हैं कॉस्ट की वजह के बावजूद भी और इसके बावजूद के फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर।
वहीं जब ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ वहीद अहमद से बात की गई तो उनका कहना था कि जब तक ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा बाकी लोग ये आम खाना शुरू नहीं करते उस वक्त तक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आमों का ऑस्ट्रेलिया आना नामुमकिन है।
हमारी एक्सपोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है वो इतनी बड़ी एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट 2019 में जो हुई थी वो 130,000 टन हुई थी और 2020 में 14 अगस्त तक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी एक्सपोर्ट हुई है वो 1,25,000 टन अभी तक हो चुकी है और 1.5 महीना सीज़न को रहता है। उम्मीद है कि हम 1.5 लाख टन भी क्रॉस करेंगे 2020 के सीज़न में इंशाल्लाह, और ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगी। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की जो बात करना चाहता हूँ कि वॉल्यूम्स कम हैं, अभी तक 14 अगस्त तक 61 टन एक्सपोर्ट हुई है ऑस्ट्रेलिया को। उसकी मेन वजह क्या है कि एक्सपोर्ट कम क्यों हो रही है और जो प्राइस क्यों इंक्रीज़ है इस साल? मेन वजह ये कि जो फ्रेट है वो 300% इंक्रीज़ हुआ है एयरलाइन का, कि कोविड-19 की वजह से एयरलाइन को भी चैलेंजेस है, उनके बड़े लॉसेस है, तो उन्होंने फ्रेट हाई कर दिया है। तो ये हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं फेस किया, हमने ये यूरोप या पूरे दुनिया में ये मसला हमें जो चैलेंज था, ये हर जगह में इश्यूज आए। तो बात ये है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज था फ्रेट बढ़ने का, इसलिए रेट बढ़ गए। और एक्सपोर्ट का वॉल्यूम क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रहा, इसलिए कि हॉट वाटर की जो फैसिलिटीज़ है पाकिस्तान में वो सिर्फ दो ही हैं इस टाइम पे। जब तक वो फैसिलिटीज़ बढ़ेगी नहीं तो एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ेगी। फिर उसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, इसके वॉल्यूम्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा मैंगो जा रहा है वो हमारे पाकिस्तानी मैंगो खा रहे हैं, इनफैक्ट के शायद इंडियंस भी ले रहे होंगे और दूसरी नेशनलिटी भी लेंगे, मगर हमें वहाँ के लोकल जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उनको हमें टारगेट करना पड़ेगा। तो हमारे वॉल्यूम्स अगले 5 सालों तक ऑस्ट्रेलिया के बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें अब रिटेल शॉप्स में जाना पड़ेगा, जो वहाँ की बड़ी चेन सुपरमार्केट्स हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा, वहाँ के जो मंडियाँ हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट उसको टारगेट करना पड़ेगा, तो आपके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। जब तक ये स्ट्रेटजी नहीं होगी तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के कभी भी वॉल्यूम्स नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में हमारा आम बायर ही आएगा, वो हमेशा महंगा ही रहेगा आम, क्योंकि बायसी हम नहीं कर सकते, क्योंकि पेरिशेबल है, इसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया बायसी तक पहुंचा दें आम को। बस ये मैं बताना चाहता हूं कि ये एक्सपोर्ट की हमारी स्ट्रेटजी होना चाहिए, मार्केटिंग खासकर।
पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में आम मंगवाने वाले बहुत से इम्पोर्टर्स में से एक वकास पिटानी भी हैं। वकास पिटानी को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और किन मुश्किलात से गुजरकर पाकिस्तानी आम को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया, इस बारे में उन्होंने एसपीएस उर्दू को बताया।
मैंगो मंगवाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा, जैसे कि पाकिस्तान में हॉट वाटर टिपिंग, फिर उसके बाद बारिश, और इन सारी मराहल से गुजरने के बाद जब हमारा मैंगो यहाँ पर पहुँचा तो उसके बाद हमें हमारे मैंगो को बहुत सारे मामलों से गुजरना पड़ा, जैसे कि करंटीना में उन्होंने हमारे मैंगो को 3 दिन के लिए रखा, और इसके बावजूद भी हमने अपने पाकिस्तानियों को और बहुत सारे लोगों को जो बड़े सगीर से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बहुत सस्ते दामों पर आम मुहैया किया। मगर बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई कि वो ये चाहते थे कि आमों के दाम और सस्ते हों, मगर ऐसा मैसर नहीं, क्योंकि एयर फ्राइट बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके बाद अगर आप ये देखें कि बहुत सारे टैक्सीज से हमें गुजरना पड़ता है जो हमें पे करने पड़ते हैं, जीएसटी है जो हमें पे करना पड़ता है, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल हम अपने सार्फिन को बहुत सस्ते दामों पर आम मुहैया करें, मगर उसके लिए हमें ये ज़रूर दरकार होगा कि हमारी कम्युनिटी और हमारे लोग जो आम को पसंद करते हैं उनकी हमें सपोर्ट की बेतहाशा ज़रूरत होगी।
सामीन, ये थी आज की पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और मैं हूं अफनान मलिक।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।